11 जून के दिन भर में सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन का अनशन खत्म किया, लेकिन किसानों को क्या हासिल हुआ?
बस आते से उनमें दिया डंडा उनने और मोह घीस के ले जा रही है। बुड्ढी तूने ट्रकों में आग लगवाई, तू गोलाबारी करवा रही, आगे पीछे कुछ नहीं सोची उनने और दिया मुंह में दो।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के सामने बुरी तरह लड़खड़ाई। और सुनिए संग संग गुनगुनाओगे में आज बात संगीतकार वसंत देसाई की। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, मानसी दास से। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान फैली हिंसा के बाद किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल शुरू किया उपवास आज समाप्त हो गया है। उपवास तोड़ने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल और आज कोई हिंसा की खबर नहीं आई है और प्रदेश में शांति की बहाली हो गई है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 16वीं बैठक में 66 वस्तुओं की टैक्स दरों में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक के बाद संशोधित दरों की जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों में संशोधन उद्योग जगत की सिफारिशों के बाद किया गया है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न ने कहा है कि प्रधानमंत्री टेरिजा में उधार लिए समय में जी रही हैं। ऑसबोर्न फिलहाल लंदन स्थित इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार के संपादक हैं। उन्होंने BBC से कहा कि बस कुछ समय की बात है, टेरिजा मे को जल्द ही इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि टेरिजा मे पहले ही अपनी सत्ता के आखिरी दिन देख रही हैं। ये तो बस देखने की बात है कि वो अब कितने और दिन सत्ता में रहती हैं, और मुझे लगता है कि उनका समय सीमित ही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्थिति अगले हफ्ते तक तो ऐसी रहेगी, लेकिन फिर उनके लिए मामला बिगड़ सकता है। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिलहाल नेतृत्व को लेकर प्रतियोगिता नहीं चाहते, तो इसमें देरी हो सकती है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके धावक उसेन बोल्ट ने अपनी ही सरजमीन जमैका में अपना आखिरी 100 मीटर रेस जीत लिया है। इस मौके पर उनके सैकड़ों हजारों फैंस मैदान पर मौजूद थे, जिनमें से कई उन्हें दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन धावक मानते हैं। रेस जीतने के बाद उसेन ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और कहा,
I don't think I've ever been that nervous. Run the 100 meters for me.
मुझे नहीं लगता कि कभी भी 100 मीटर की रेस में मैं इतना नर्वस हुआ होऊंगा। मेरे लिए यहाँ पर जो माहौल है, जो लोग यहाँ आए और मेरा इतना समर्थन किए, ये सब नर्वस करने वाला था। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं जानता था कि ये रेस महत्वपूर्ण है और स्टेडियम भी खचाखच लोगों से भरा था। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जमैका के धावक उसेन बोल्ट के शब्द। श्रीलंका में पुलिस का कहना है कि उन्होंने हाल में मस्जिदों और मुस्लिम व्यवसायों पर होने वाले हमलों के सिलसिले में कथित चरमपंथी समूह बौद्ध समूह बोडू बाला सेना के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने समूह के नेता गालोगोट न्यानसार के एक करीबी सदस्य को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने बताया है कि व्यक्ति की उम्र 32 साल है और वो बीते 3 सालों से बोडू बाला सेना के सदस्य हैं। अमेरिका के पेरिस जलवायु संधि से बाहर जाने की घोषणा के बाद इटली में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक चल रही है। ये मंत्री चाहते हैं कि ट्रंप प्रशासन अब यह साफ करे कि वो आगे इस मामले में क्या करने वाले हैं। इटली के पर्यावरण मंत्री जियान लुका गालेटी ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद हमें बात करते रहना होगा, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जीत है और यदि हारे तो सभी पक्ष एक साथ हारेंगे। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर लाइव।
इंडिया ही जीतेगा आज मैडम, नहीं जीतेगा तो हमारा डंडा तैयार है।
साउथ अफ्रीका के सपोर्टर भी नहीं है,
कोई दिखता ही
कोई भी नहीं है।
चक दे हो चक दे इंडिया। आज हमारे जो विराट कोहली हैं वो मेरे ख्याल से आज 100 करेंगे और उसका जो फ्रेंड है साउथ अफ्रीका एबी डिविलियर्स उसको हराएंगे और इंडिया जीतेगा।
लंदन के ओवल से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की ये आवाज़ें आप सुन रहे थे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच करो या मरो का मुकाबला जारी है। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद है, मुकाबला कहां तक पहुंच गया है?
जी देखिए, मुकाबला जहां तक पहुंचा उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, करो या मरो की बहुत बात हो रही है लेकिन एक शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो खतरा खोना निकला। क्योंकि इस करो या मरो वाले मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीकी पारी को 44.3 ओवर में ही केवल 191 रन पर समेट दिया।
200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई।
जी हाँ बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले जब 14वां ओवर चल रहा था तो भारत का स्कोर एक विकेट खोकर 56 रन था। कप्तान विराट कोहली को हालांकि पिछले ओवर में एक मौका ज़रूर मिला लेकिन इसके बावजूद काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय वो 16 और शिखर धवन 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इस मुकाबले पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। दिल्ली में आज एक बैठक हुई है, ये बैठक गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की थी। इस बैठक में 50 से ज़्यादा चीज़ों पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव किया गया है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए BBC संवाददाता सलमान रावी स्टूडियो में मौजूद हैं।
भाई काजू के शौकीन लोगों को तो एक राहत मिली है कि 12% से 5% अब उस पर GST लगेगा। ये तो थी एक लाइटर वेन में, लेकिन कुल मिलाकर 133 में से 66 वस्तुओं पर जो है टैक्स की दरों में कटौती की आज घोषणा की गई। GST काउंसिल की बैठक हुई दिल्ली के विज्ञान भवन में और इसमें जो है कि और एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि अगरबत्ती पर टैक्स 12% रखा गया था GST पर, लेकिन अब उसको भी 5% कर दिया गया है। उसी तरह इंसुलिन, जो एक जाहिर सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है डायबिटीज़ के लोगों के लिए, इंसुलिन पर भी 5% कर दिया गया 12% से घटाकर GST। और प्लास्टिक की तिरपाल जो 28% जिसको रखा गया था GST में, उसको 18% कर दिया गया। स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, एक तो यह है कि उनकी जो ड्राइंग रंगीन किताबें यानी रंग करने वाली जो किताबें हैं उन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा,
जमकर रंगीन।
हाँ तो बच्चों के जो है ना उस लिए ये अच्छी खबर है। और साथ साथ उनके स्कूल बैग पर भी टैक्स को काफ़ी कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाइप जो है उस पर 28% रखा था पहले, जिसको घटाकर 18% किया गया है। छुरी कांटों का जिनको शौक है खाने का उनके लिए भी खुशखबरी है इसमें कि 18% से अब 12% हो गया है। और ट्रैक्टर से जुड़े सामानों पर भी कटौती की गई है, कंप्यूटर प्रिंटर्स भी उसी तरह से किया गया है। लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स का जहाँ तक सवाल है, सिनेमा देखने वालों के लिए अब भी थोड़ा सा बुरी खबर ये है। हालांकि राहत भी है कि 100 रुपये की कीमत वाले जो टिकट हैं उनको जो है 18% GST लगेगा उन पर, और जबकि 100 रुपये से ज़्यादा के जो टिकट हैं उन पर 28% टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें था कि काफ़ी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए, उद्योगपतियों ने रिप्रेजेंटेशन दिए जिसका रिव्यू किया गया। हालांकि 18 जून को भी एक और बैठक होने वाली है और इस में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें हालांकि पैकेज्ड वाटर जो है, जो हम पानी पीते हैं ट्रेन में बोतल बंद पानी, तो बोतल बंद पानी पर टैक्स कम नहीं किया गया है। ये एक जो रिप्रेजेंटेशन था, बोतल बंद जो पानी के व्यवसाय में जुड़े लोग हैं उन्होंने अप्रोच किया था कि अगर 28% इस पे टैक्स लगेगा तो काफी महंगा हो जाएगा और पानी तो ऐसी चीज है कि वो काजू से भी ज्यादा कीमती है।
लेकिन काजू सस्ते कर दिए हैं, काजू कम कर दिया
जी,
है
जी, 5%
पानी महंगा हो गया है।
पानी तो महंगा हो जाएगा अगर ये 1 तारीख से रोल आउट होगा, लेकिन रोल आउट को लेकर भी थोड़ा सा बंगाल की आपत्ति है। बंगाल का के मंत्री अमित मित्रा जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1 महीने और डिले करना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं और जिनको ये लागू करना है, अपने सिस्टम को अपडेट करना है, उनको इस पे थोड़ा सा वक्त लगेगा।
ये थे मेरे सहयोगी सलमान रावी जो बता रहे थे कई चीज़ों पर लगने वाले टैक्स अब बदल गए हैं। और इसी के साथ हम रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां किसानों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं के बाद पिछले दो दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उपवास की वजह से सुर्खियां बटोर रहे थे। आज उन्होंने नारियल पानी पीकर अपना अनिश्चितकालीन उपवास समाप्त कर दिया। इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर उनके साथ जाति का आरोप लगाकर राज्य की कानून व्यवस्था और प्रदर्शनकारियों से निपटने के पुलिस के तौर तरीकों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। सुनिए भोपाल से शूर्य नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नारियल पानी पीकर अपना उपवास समाप्त कर दिया। प्रदेश भर में किसानों के मुद्दे को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मुश्किल हालात में पा रहे थे। खुद किसान होने का दावा करने वाले शिवराज सिंह चौहान को अगले साल चुनाव का सामना करना है, इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे पर उपवास का सहारा लिया। मुख्यमंत्री ने उपवास खत्म करने से पहले किसानों के लिए कई घोषणाएं की।
किसी की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी उसकी मर्जी के बिना, किसानों की सहमति से ही बाकी योजनाएं बनाई जा सकेगी। हमने फैसला किया है तो मंदसौर की हिंसा की पूरी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। इसके पीछे कौन है? किसान नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, किसान के नाम पर शैतान घुस गए, किसान के नाम पर हैवान घुस गए, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की है। निर्दोष किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, उन पर कोई केस नहीं चलेगा जो निर्दोष है।
वहीं भोपाल के नजदीक फंदा में दो दिन पहले हुए किसान आंदोलन में पुलिस की कथित कार्रवाई में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया और उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। पीड़ित महिला कमलाबाई मेवाड़े की गलती बस यही थी कि वो उस इलाके में रहती हैं जिस इलाके में यह प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने बताया,
बस आते से उनमें दिया डंडा उनने और मोह घीस के ले जा रिया। अरे के बुड्ढी, तू ने ट्रैक्टर ट्रक उनमें आग लगवाई, तू गोलाबारी करवा रही? अरे भैया, मैं कहाँ का ट्रैक्टर में, मालूम नहीं कौन है कौन नहीं है, जरा चेहरो भी तो देख। आगे पीछे कुछ नहीं सोची उनने और दिया मुँह में दो हेच के, बस मुँह चक्कर आ गया और बस हेच के पकड़ के ले जाने लगी हमारे छोरा उनको झूमिया। अरे हमारी दादी का ले जाओ, हमारी अम्मा का ले जाओ, तो उन्हें ऐसा मारिया ढोर गई कूटिया।
कमलाबाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास के दौरान भी उनसे मिलने का प्रयास किया ताकि वो अपनी आप बीती उन्हें बता सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
उधर मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र में पिछले 11 दिनों से चल रही किसानों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के नतीजे आज आ गए हैं। इस परीक्षा में पंचकुला के सर्वेश मेहतानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब से कुछ देर पहले मैंने सर्वेश से बात की और IIT की तैयारी करने वाले BBC के युवा श्रोताओं के लिए गुरु मंत्र जानना चाहा।
देखिए, मेन जो आप 10th क्लास तक करते हो वो आप मेजरली CBSE तक का करते हो और कोई एक सब्जेक्ट आप थोड़ा हाई लेवल तक कर सकते हो। तो मेजर मतलब प्रॉपर फोकस तैयारी होती है JEE की, वो आपकी मेजर 11th क्लास से शुरू होती है। तो जैसे मैंने 10th क्लास में मैथ ज्यादा किया था और फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ स्कूल लेवल तक का करता था, 11th में आके सब कुछ जब प्रॉपर JEE के हिसाब से तैयारी होती है।
सर्वेश, ये भी बताइए कि तैयारी में कोचिंग कितनी जरूरी है और सेल्फ स्टडी कितनी जरूरी है?
कोचिंग है वो, उसको आपको एडवांस करना जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप JEE का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें सब कुछ एडवांस जाता है, तो कोचिंग जरूरी होगी। लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं आपने क्या किया है, उसको फिर से रिवाइज नहीं किया, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं किए, आप उस कॉन्सेप्ट पे ग्रास्प नहीं ला सकते अपनी। तो सेल्फ स्टडी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप हर दिन कितने घंटे वक्त देते थे पढ़ाई के लिए?
क्लासेस और स्कूल और कोचिंग के अलावा अराउंड 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, अगर छुट्टी नहीं है तो, और अगर छुट्टी है तो अराउंड 8 आवर्स। मेजरली तो ये होता है कि जो आपके टीचर्स कहते हैं उसे प्रॉपर फॉलो करो, क्योंकि नहीं तो आप अपने पाथ पे सही चल नहीं पाओगे। जो टीचर्स कह रहे हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करोगे, आप सक्सेस जरूर मिलेगी।
ये थे IIT प्रवेश परीक्षा के टॉपर सर्वेश मेहतानी। आपको बताते चलें, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले के अलावा रोला गैला की लाल बजरी पर जारी है फ्रेंच ओपन में पुरुषों का फाइनल मुकाबला, चर्चा करेंगे इस पर भी। लेकिन पहले खेल के साथ साथ थोड़ा संगीत का आनंद लीजिए। संग संग गुनगुनाओगे में आज फिर संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ आज हम कर रहे हैं बात वसंत देसाई की।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
घनश्याम सुंदरा सिधरा अरुणोदय झाला, उठिलव करि वनमाली उदया चले मित्र आला।
शास्त्रीय और लोक संगीत की परंपरा में जो मुकाम भक्ति संगीत का है या प्राचीन मंदिरों से निकलकर चली आई संगीत परंपरा का है, उसमें फिल्म संगीत के सबसे बड़े पुरोधा वसंत देसाई ठहरते हैं। वसंत देसाई की जब हम बात करेंगे तो ये बात हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक ऐसे संगीतकार के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं जिसका संपूर्ण सांगीतिक जीवन ही किसी लंबी प्रार्थना का अनुसरण लगता है। एक ऐसी प्रार्थना जो संगीत के सारे मयार को, सारे उपादानों को, सारी खिड़कियों को खोल देती है, एक बड़े आकाश में विस्तृत होती हुई परंपरा जो कहीं ना कहीं फिल्म संगीत को भी बड़ा बनाती है।
ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम।
ये गीत जो अभी आपने सुना वो एक जमाने में स्कूलों में प्रार्थना गीत बन चुका था। हर दूसरा विद्यालय इस गीत की प्रार्थना से ही अपने बच्चों की शिक्षा आरंभ करता था। ये कुछ कुछ उसी तरह है जिस तरह तुलसीदास अपने स्वांता सुख के लिए रामचरितमानस जैसी कविता लिखते हैं और बाद में उसे परंपरा में धर्म ग्रंथ का स्थान मिल जाता है।
बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी।
मराठी मूल के वसंत देसाई को संगीत का संस्कार अपने नाना अबा भास्कर पारुलेकर से मिला था। वे एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे और ये जानना महत्वपूर्ण बन जाता है कि मराठी नाट्य संगीत का मामला हो या भक्ति संगीत का मामला हो या भाव गीतों का मामला हो, हर जगह कीर्तनकारों की उपस्थिति प्रमुखता से रही है अगर उसकी जमीन मराठी नाट्य संगीत है। ऐसे में धार्मिक पौराणिक दशावतारी नाटकों में प्रचलित कथाओं के सांगीतिक निरूपण का पूरा अभ्यास वसंत देसाई को अपने बचपन और तरुणाई में ही हो गया था, जिसका प्रदर्शन वे बाद में वी शांताराम की फिल्मों में लगातार करते हैं जो अपने में एक बहुत बड़ा सांगीतिक उदाहरण है। जिन गीतों को आपने सुना वे सभी राजकमल कला मंदिर यानी शांताराम प्रोडक्शन की फिल्में रही हैं, और इसके अलावा जिन फिल्मों में उनका उत्कृष्ट संगीत देखा जा सकता है उसमें पर्वत पे अपना डेरा, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जीवन यात्रा, मतवाला शायर राम जोशी, झनक झनक पायल बाजे, मौसी, लड़की सहयाद्री की जैसी फिल्में हैं। ये सारी फिल्में शांताराम ने बनाई और इन सारी फिल्मों के संगीत में एक खास किस्म का महाराष्ट्र मौजूद है। हर संगीतकार की तरह वसंत देसाई का नाम भी लता मंगेशकर जैसी महान पार्श्व गायिका के साथ गुथा हुआ है, इस रूप में कि जब दोनों मिल करके किसी धुन पर काम करते थे तो वो अमर संगीत का उदाहरण बनता था। जिस तरह एसडी बर्मन, जयदेव, रोशन और तमाम अन्य संगीतकारों के लिए लता मंगेशकर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ गायन किया है, वैसा ही कुछ आपको वसंत देसाई की धुनों में भी मिलता है। वसंत देसाई का नाम कोल्हापुर के देवल क्लब से जुड़ा हुआ है। ये देवल क्लब कुछ उसी तरह से अपना अर्थ रखता है जिस तरह से सलिल चौधरी के लिए इप्टा अपना स्थान ग्रहण करती है या बंगाल के संगीत का जादू एसडी बर्मन के रगों में दौड़ता है। ये देवल क्लब ही था जहां वसंत देसाई की मुलाकात उन दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, उस्ताद बंजी खां और वजह बुआ से हुई थी। अब जब एक फिल्म संगीतकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद मंजी खां के सहयोग में आता है, उनके संपर्क में आता है, तो कहना ना होगा कि उसकी शास्त्रीयता में चार चांद लगते हैं और संगीत परंपरा या उसका विचार कुछ दूसरे ढंग से निखर आते हैं। हिंदी फिल्म संगीत में झनक झनक पायल बाजे एक मील का पत्थर सरीखी फिल्म है और इस फिल्म के निर्णायक संगीतकार के रूप में वसंत देसाई का नाम आता है। वसंत देसाई जिन्होंने इस फिल्म में शास्त्रीयता के तमाम सारे शिखर छू लिए थे और जब यह फिल्म आई थी तो उस जमाने में विदेशी रॉक एंड रोल और ओल्ड सिम्फनीज के बरक्स उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को सजाने का मामला सामने आया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि झनक झनक पायल बाजे का पूरा एल्बम ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट उदाहरण है।
कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है और कोई कहे घनश्याम।
वसंत देसाई पर बात करते हुए इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा को जिन भारतीय वाद्यों से सजाया था उसमें वीणा, सितार, सारंगी, संतूर, बांसुरी, शहनाई, सुरमंडल, तार शहनाई, तानपुरा, जल तरंग, तबला तरंग, डुग्गी तरंग, काश तरंग, खमक यानी गोपी यंत्र, नाल, खंजड़ी, बिमड़ी, ढफली, खोल, घुंघरू और डमरू जैसे वाद्य शामिल थे। ये कितना दिलचस्प है कि हम एक ऐसे संगीतकार की बात कर रहे हैं जिसके यहाँ पियानो कम बज रहा है, जिसके यहाँ वाइब्रोफोन सैक्सोफोन कम बज रहा है, वहाँ डमरू, खंजड़ी, पखावज, सुरमंडल और जल तरंग बज रहे हैं। ऐसे संगीतकार को प्रणाम करने को जी चाहता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के अर्थ में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि ऐसे दौर में जब एसडी बर्मन, शंकर जयकिशन और सी रामचंद्र जैसे फनकार भारतीय और पाश्चात्य संगीत के सहमेल से अपनी धुनें विकसित कर रहे थे, ऐसे में वसंत देसाई मराठी भाव संगीत और भक्ति संगीत का आसरा लेकर भारतीय वाद्यों से शुद्ध भारतीय संगीत रच रहे थे, जो कहीं ना कहीं मंदिर में बैठकर गाया बजाया जा सकता था और जिससे एक पुरानी आर्ष परंपरा की महक आती थी।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ सुन रहे थे आप संग संग गुनगुनाओगे। आज बात हो रही थी वसंत देसाई की, संगीतकार वसंत देसाई की। और अब एक बार फिर खेल के मैदान का रुख करते हैं। आदेश जी स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, सबके नजरे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच करो या मरो कहे जा रहे मुकाबले पर, जहां अब ऐसा लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारत का स्कोर थोड़ी देर पहले 17 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 75 रन था। भारत का एकमात्र विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा, जो क्विंटन डिकॉक के हाथों मोने मोर्कल की गेंद पर कैच हुए। उनके बल्ले से 12 रन निकले, लेकिन फिलहाल शिखर धवन 35 और विराट कोहली 26 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। इससे पहले आज भारत ने एक परिवर्तन किया, आर अश्विन को टीम में जगह दी। और इसके अलावा अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी टीम में एक परिवर्तन किया था, लेकिन उनका कोई भी परिवर्तन टीम के काम नहीं आया। आर अश्विन ने हालांकि आज केवल एक विकेट हासिल किया, उन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी की। दूसरी तरफ अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो उनकी पूरी पारी 44.3 ओवर में ही केवल 191 रन पर सिमट गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही सलामी जोड़ी क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला के बीच धीमी रफ्तार से की गई बल्लेबाजी। और सारा दबाव जिस तरह से इस जोड़ी पर नजर आया, उस दबाव से बाकी के बल्लेबाज भी उभर नहीं सके। कहने को क्विंटन डिकॉक ने 72 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, हाशिम आमला ने भी 54 गेंदों पर 35 रन बनाए, लेकिन ये रनों की रफ्तार इस करो या मरो वाले मुकाबले से मैच नहीं करती। आज तेज़ गति से रनों की रफ्तार की ज़रूरत थी, और अगर स्कोर बोर्ड पर 300 रन टंगे होते तो भारत जब बल्लेबाजी कर रहा है तो लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होती। अब तो ऐसा लगता है कि सब मस्ती में शॉपिंग करने भी निकल गए होंगे, या फिर
मामला लग
रविवार का मामला, पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। जिस अंदाज में विराट कोहली और शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज उनके सामने बहुत ही सुस्त नज़र आ रहे हैं। बस एक मिनट और लूँगा थोड़ा सा, कि आज फेफ डू प्लेसिस ने 36 रन बनाए, जबकि डिविलियर्स के बल्ले से 16 रन निकले। जेपी ड्यूमिनी ने नाबाद 20 रन बनाए, बाकी कोई बल्लेबाज दहाई तक नहीं पहुंचे।
और वहां फ्रेंच ओपन में क्या चल रहा है?
लाल बजरी का बादशाह एक बार फिर से अपने रंग में लौट आया, और आज आप भी लाल टी शर्ट में बैठे हैं। और राफेल नडाल जो कि आज फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं स्विट्जरलैंड के स्टीन वावरिंका के खिलाफ, थोड़ी देर पहले 6-2 से वो पहला सेट अपने नाम कर चुके हैं।
बहुत शुक्रिया, ये थे आदेश कुमार गुप्त अपने चिर परिचित अंदाज में।
संदीप, अभी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कल एक और करो या मरो मुकाबले में श्रीलंका और पाकिस्तान का सामना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होगा।
बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही भारत में थोड़ी देर में बजेंगे रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले सुनेंगे मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 16वीं बैठक में 66 वस्तुओं की टैक्स दरों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान फैली हिंसा के बाद किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल शुरू किया उपवास आज समाप्त हो गया है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री जॉर्ज ऑस्बोर्न ने कहा है कि प्रधानमंत्री टेरिजा मे उधार लिए समय में जी रही हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा कि बस कुछ समय की बात है, टेरिजा मे को जल्द ही इस्तीफा देना पड़ेगा। 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके धावक उसेन बोल्ट ने अपनी ही सरजमीन जमैका में अपना आखिरी 100 मीटर का रेस जीत लिया है। रेस जीतने के बाद उन्होंने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने मानसी दास से। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अब संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com 24 घंटे हर समय हर जगह आपके साथ है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।